स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 14 फरवरी और दिन गुरुवार। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी हमला, कम से कम 18 सीआरपीएफ जवानों की मौत।
What led to this explosion? These are all subject of investigation.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार के अधिकारों का किया बंटवारा, लेकिन केजरीवाल नाखुश।
और सारी शक्तियाँ आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को छोड़ के विपक्षी पार्टी को दे दी गई। हमें लगता है कि ये जजमेंट ना केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ।
वैलेंटाइन डे पर होगी एक खास रिपोर्ट।
5 months के लिए तो दोनों इतना डर गए थे, और उसके बाद मुझे ये फियर था कि बाहर जाऊंगी तो कोई ना कोई मार लेगा मुझे, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम एंड ही इज अ हिंदू।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में आज चरमपंथी हमले में सीआरपीएफ के 18 जवान मारे गए। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर लेथपोरा में हुए इस हमले में 44 जवान भी जख्मी हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जख्मी जवानों को श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ईरान पर लगाए गए अमरीकी प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश पर यूरोपीय देशों की आलोचना की है। ईरान के साथ यूरोपीय यूनियन ने अपने संबंध सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाए हैं उसकी उन्होंने निंदा करते हुए कहा है कि वे अमरीका और यूरोपीय साझेदारों के साथ दूरी बना रहे हैं। पोलैंड में 60 देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में पेंस ने चेताते हुए कहा कि मध्य पूर्व में ईरान सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से निवेदन किया कि वो अमेरिका के रास्ते पर चले और ईरान के परमाणु समझौते से बाहर हो जाए। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की शुरुआत में कई देशों के नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि मध्य पूर्व में इस्लामी गणराज्य ईरान शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। 40 साल पहले इसी महीने में मुल्लाओं ने इस देश को कब्जे में ले लिया था, और तब से वो आतंकी प्रतिनिधियों और हिजबुल्ला हमास जैसे लड़ाकों का समर्थन कर रहे हैं। मिसाइल निर्यात करके इस देश ने सीरिया और यमन जैसे अनेक देशों में संघर्ष को पोषित किया है। ये थे अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। वहीं बुधवार को 27 ईरानी जवानों के मारे जाने की घटना में ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का हाथ बताया है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि सुन्नी मुस्लिम चरमपंथी समूह जैश अल अदल ने यह हमला किया है। हालांकि रूहानी ने कहा है कि अमेरिका, इसराइल और खाड़ी के कई अमीर राष्ट्र मध्य पूर्व में आतंक के मुख्य प्रायोजक हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवान पाकिस्तान से लगे सीमांत क्षेत्र का बस से दौरा कर रहे थे जब उन्हें निशाना बनाया गया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मानहानि की आरोपी फिलीपींस सरकार की आलोचक और पत्रकार मारिया रिसा ने बीबीसी से कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए हैं। 7 साल पहले लिखे गए लेख के लिए बुधवार को गिरफ्तार की गई मारिया रिसा को जमानत पर रिहा किया गया है। उन्होंने कहा कि वो उन्हें और उनकी वेबसाइट रैपलर को चुप करना चाहती है। वो और उनकी वेबसाइट लगातार राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे की आलोचना करती रहे हैं। रिसा ने कहा कि डुटर्टे के अंतर्गत फिलीपींस में लोकतंत्र कई समस्याओं से पीड़ित है।
This is political harassment. It is meant to intimidate.
ये एक राजनीतिक प्रताड़ना है। ये मुझे और रैपलर को डराने के लिए है ताकि हम चुप रहें। लेकिन इसके परे ये समाज में प्रेस की स्वतंत्रता की भूमिका के रूप में देखा जाएगा। मेरा मतलब ये है कि प्रेस स्वतंत्रता न केवल पत्रकारों के लिए है, बल्कि प्रेस स्वतंत्रता लोकतंत्र का खंभा है ताकि फिलीपींस के नागरिकों के पास सत्य का अधिकार हो। ये थे फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा के शब्द। यूरोप की हवाई जहाज निर्माण कंपनी एयरबस ने कहा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान A380 को नहीं बनाएगी। इस फैसले को दर्दनाक बताते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम एंडर्स ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि डबल डेकर विमान को मार्केट में लाने में 10 साल लगेंगे, जिससे काफी देर होगी। इस कंपनी को तब झटका लगा था जब उसके सबसे बड़े उपभोक्ता अमीरात एयरलाइंस ने अपना ऑर्डर घटा दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन में मानवीय संकट बद से बदतर है। देश की 2.4 करोड़ यानी 80% जनता को इस समय किसी न किसी सहायता की जरूरत है। पिछले साल की तुलना में इस समय 27% अधिक लोगों की मदद की जरूरत है। चीन में पकड़े स्वीडन के नागरिक को आजाद करने की अनाधिकारिक कोशिश के तहत स्वीडन ने बीजिंग से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की 14 तारीख और दिन है गुरुवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भारत प्रशासित कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में लेथपोरा के पास श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर चरमपंथियों ने IED धमाका कर CRPF के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में अब तक कम से कम 18 जवानों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी और करीब 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। बस में करीब 40 सुरक्षाकर्मी थे। विस्फोटक पदार्थों से भरी एक कार सीधे आकर बस से टकरा गई। जख्मी जवानों को श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
पिछले 3 वर्ष में फोर्सेस पर होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चरमपंथियों ने काफी समय से इस हमले की नीति बनाई थी, क्योंकि हमले में बारूद से भरी एक कार को CRPF जवानों से भरी एक बस के साथ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेथपोरा पुलवामा के निकट टकराया गया और बाद में फायरिंग भी की गई। इस हमले में कम 18 जवान मारे गए जबकि 40 से अधिक घायल हैं। पुलिस का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ये दोनों बसें CRPF की एक कॉन्वॉय का हिस्सा थीं जो जम्मू से श्रीनगर आ रही थीं। इस घटना के बाद घाटी में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और राजमार्ग पर ट्रैफिक रोक दिया गया और लेथपोरा के इर्द गिर्द कई बस्तियों का घेराव किया गया जहां हमलावरों की तलाश की जा रही है।
What led to this explosion? These are all subject of investigation.
Okay.
So we are going to carry out a professional post-blast investigation.
पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल स्वयं प्रकाश पानी ने कहा कि हमले की जाँच की जा रही है और पुलिस जल्द ही इस बारे में खुलासा करेगी। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपति गुट जैश मोहम्मद ने स्वीकार करते हुए कहा है कि ग्रुप के आदिल अहमद उर्फ वकास कमांडो, जो कि गुंडीबाग पुलवामा के रहने वाले हैं, ने ही बारूद से भरी गाड़ी CRPF कॉन्वॉय के साथ टकरा दी। घटना के बाद आदिल का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने हमले की पुष्टि की है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि चरमपंथी अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए बेताब हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की निंदा की है। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह CRPF के महानिदेशक के साथ कल घाटी का दौरा करेंगे। पिछले 2 वर्षों से घाटी में चरमपंथियों के विरुद्ध सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है जिसमें अब तक 400 चरमपंथी मारे गए। इस वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऑपरेशन में तेजी लाई गई। चुनाव की सिक्योरिटी तैयारियों के संदर्भ में यह हमला अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज मालूम होता है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
और एक दफा फिर चलते हैं रियाज मसरूर के पास, जो इस वक्त श्रीनगर में है और टेलीफोन लाइन के जरिए मुझसे जुड़ चुके हैं। रियाज, सबसे पहले तो यही बताएं कि क्या अब तक जो सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं उनकी संख्या 18 ही है या उसमें कोई मजीद बढ़ने की आशंका है?
जी, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी बात हुई है पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स के साथ, उनका कहना है कि जो ये संख्या है, संख्या के बारे में अभी कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि जो नेचर ऑफ अटैक है वो बहुत ही ब्रूटल है। क्योंकि जो बारूद से भरी गाड़ी जब टकराई है बस के साथ, तो जिस बस के साथ वो टकराई है केवल उसी बस में 44 CRPF जवान थे, तो इसलिए कई जवानों के शव जो हैं वो डिसमेंबर हो गए हैं, इधर उधर हो गए। इसलिए जब तक रोल कॉल नहीं बुलाया जाता, जब तक ये देखा नहीं जाता कि कितने लोग थे और कितनी लाशें हैं, तब तक सिर्फ उन बॉडीज को काउंट किया जा रहा है जो बिल्कुल कंप्लीट हालत में देखी गई हैं। तो अभी तक जो पुष्टि हुई है वो 18 लोगों की हुई है, लेकिन कई जगहों से कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कुछ लोग 22 कह रहे हैं। इसीलिए जैसा कि अभी हमने सुना इंस्पेक्टर जनरल स्वयं प्रकाश पानी को भी, तो उन्होंने भी कहा कि अभी हम जो है प्रिलिमिनरी जांच कर रहे हैं, तो जांच के बाद ही कल तक जो है ये सारी पिक्चर।
हॉस्पिटल से कुछ मजीद जानकारी नहीं मिल पा रही है?
नहीं, क्योंकि जो ये घायल CRPF जवान है उन्हें 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है जहां मीडिया को अनुमति नहीं होती है और वहां के जो अधिकारी होते हैं हॉस्पिटल के वो एक्सेसिबल नहीं होते जैसा कि सिविल हॉस्पिटल में होता है। तुरंत पता चलता है कि जख्मियों की क्या हालत है।
जी, और एक आखिरी सवाल रियाज, ये बताएं कि जो जैश ये दावा कर रही है और आदिल अहमद उर्फ वकास, इनके बारे में क्या पहले से किसी तरह की कोई जानकारी वहाँ की मीडिया में, वहाँ की पुलिस में, सुरक्षा कर्मियों में?
जो ये वीडियो इन्होंने जारी किया इसमें बिल्कुल, एक तो ये बहुत ही खराब क्वालिटी का ऑडियो है उसमें, लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं वो खुद दावा करते हैं कि वो 1 साल से जैश मोहम्मद के साथ जुड़े रहे हैं और 1 साल के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये अपनी नवियत का पहला वाकया नहीं है। यहाँ पे जो फिराई हमले होते रहे या सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स होते रहे वो 2004 तक होते रहे, उसके बाद उनमें कमी आई थी, लेकिन ये काफी मुद्दत के बाद पहली बार इस तरह से जैश ने ये हमला किया। और ये भी मैं बताता चलूं कि 2001 में जब यहाँ एक हमला हुआ था इसी तरह
असेंबली में,
हाँ असेंबली में कश्मीर की विधानसभा पर एक अटैक किया था और उसकी जिम्मेदारी भी जैश ने ही कबूल की थी और उसका भी नेचर ऑफ अटैक और पैटर्न यही था।
जी बहुत शुक्रिया रियाज मसरूर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि रियाज ने बताया कि भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल श्रीनगर जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस हमले को कायरतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले से मैं व्यथित हूं। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। और अब बात दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर बंटवारा कर दिया। जस्टिस ए के सिकरी और अशोक भूषण की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद वैसे तो पिछले साल नवंबर के महीने में ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज उन्होंने एक खंडित फैसला दिया और मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। जस्टिस सिकरी ने कहा कि प्रशासनिक मामलों के से जुड़े सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं, जबकि कानून, पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों में ये अधिकार केंद्र के पास हैं। सिकरी ने अपने फैसले में कहा कि सरकार में निदेशक स्तर यानी डायरेक्टर स्तर की जो नियुक्ति है वो दिल्ली सरकार कर सकती है। वहीं जस्टिस भूषण का फैसला इसके ठीक उलट है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के पास सारी कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल के पास है। केजरीवाल या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये फैसला तो दिल्ली के जनता के खिलाफ है। उनका कहना था,
जनतंत्र है ना, जो सरकार चुन के आती है, जिसको जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताया, अगर उस सरकार को काम करने की शक्तियां ही नहीं है तो फिर वो सरकार कैसे काम करेगी? कैसा जनतंत्र है, कैसा ऑर्डर है? और अगर वो सारी ताकतें शक्तियां विपक्षी पार्टी को दे दी जाएं, तो विपक्षी पार्टी तो ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी जो सरकार चलने ही ना दे। ये कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच अब दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। 40 साल से दिल्ली के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में थी एंटी करप्शन ब्रांच, अब नहीं है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री के पास कोई आके कहे कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं क्या करूं? मैं विपक्षी पार्टी को बोलूं, बीजेपी को बोलूं कि अब आप इसका इसके खिलाफ एक्शन लीजिए? वही तो करवा रहे हैं, विपक्षी पार्टी तो सारा गड़बड़ करवा रही है और सारी शक्तियां आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को छोड़ के विपक्षी पार्टी को दे दी गई। हमें लगता है कि ये जजमेंट ना केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये जजमेंट जनतंत्र के खिलाफ है।
ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन भाजपा की जो दिल्ली इकाई है उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भ्रम या विवाद के लिए अब शायद कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर मौजूद संशय को हटाने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इस फैसले के बाद भ्रम या विवाद के लिए कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। दिल्ली सरकार को विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और राजधानी पर उसी तरह से शासन करना चाहिए जैसा कि उनके सत्ता में आने से पहले होता था। और अब बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी नाम के एक भारतीय निजी न्यूज चैनल के दो पत्रकारों के साथ हाथापाई की तथा कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए। जबकि छात्रों का कहना है कि रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कथित आतंकवादियों की यूनिवर्सिटी कहा था, जिसके कारण विवाद बढ़ा। छात्रों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में दिल्ली में मौजूद यूपी भवन के पास आज एक विरोध प्रदर्शन हुआ। सुनिए ये रिपोर्ट।
दिल्ली के यूपी भवन में लोग इस मामले के खिलाफ इकट्ठा हुए। वहां एमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी भी पहुंचे, जो उन छात्रों में शामिल है जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज है, जबकि उनका कहना है कि वो तो उस समय वहां थे ही नहीं।
जिन लोगों ने फायरिंग की, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, यही लोग बाद में पुलिस प्रशासन को जाके कंप्लेन करते हैं कि इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, जबकि वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा था, तो नारे कहाँ से लगेंगे। और 14 स्टूडेंट के ऊपर मुकदमा कायम किया जाता है। मैं खुद दिल्ली में हूँ पिछले तीन चार दिन से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट को एड्रेस करने के लिए मैं आया था, वहाँ पर मैं इन्वाइटेड था। मैं दिल्ली में हूँ और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैंने जो है वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
एमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वे भी कहते हैं कि उन्होंने इस तरह के नारे नहीं लगाए।
आप ये यकीन कर सकते हैं कि हम लोग क्यों करेंगे भाई, हम हिंदुस्तान में रहे, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है। हमारे यूनिवर्सिटी में मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पाकिस्तान से कोई मोहब्बत, कोई ये मोहब्बत नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई नारा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान जय हिंद का नारे के साथ शुरू करते हैं, जय हिंद के नारे से खत्म करते हैं।
जबकि बीजेपी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी कहते हैं कि उनके पास इसके सबूत हैं और उन्होंने इसी आधार पर पुलिस को नाम दिए हैं।
मुझे देखते ही एमयू के सारे छात्र हजारी के तालाब में टूट पड़े और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मेरी तरफ गाड़ी में हमला कर दिया, मुझे फायरिंग करी, जिसमें से एक गोली मेरी गाड़ी में लगी और दूसरी गोली मुझे जेब के 15 छात्रों पर लगाया। लगभग नाम बार पहचान मैडम, वीडियो में देखिए, नाम बार मैंने पहचान करवाई इनकी।
हालांकि अलीगढ़ के SSP आकाश कुल्हारी ने अभी किसी भी तरह के सबूत की बात स्वीकार नहीं की है।
प्रशासन कोई मुकदमा सेडिशन का नहीं लिख रही है, ये बहुत बड़ी भ्रांति एक फैल रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी तहरीर देता है, अपनी एप्लीकेशन देता है, अगर उसकी एप्लीकेशन में जो भी कंटेंट शुरुआत में पाए जाते हैं, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, उसी कंटेंट के आधार पर FIR लिखी जाती है। तो मुकेश लोधी ने जो अपनी एप्लीकेशन दी थी, उसमें जो कंटेंट थे उसके आधार पर सेडिशन लगाया गया था, 124 सेक्शन है। उसके बाद में प्रथम दृष्टया जो उन्होंने दिया है, तो अभी हमने एविडेंसेस देख रहे हैं, तो उस एविडेंसेस में अब तक नहीं आ रही है ऐसी कोई भी बात कि इस तरह से उन्होंने नारेबाजी की और ये सब किया। एविडेंसेस हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो चार्जेस फॉल्स होते हैं उसकी धाराएं हम हटा देते हैं और जो चार्जेस स्टैंड करते हैं उन्हीं पे हम लोग चार्जशीट करते हैं।
इस मामले में सभी पक्षों का अलग अलग कहना है। पुलिस इसकी पड़ताल करने में जुट गई है कि आखिर सच क्या है। BBC ने इस मामले पर रिपब्लिक TV से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रोग्राम के प्रसारित होने तक उनका कोई जवाब नहीं आया है।
ये थी मीना कोतवाल और अब एक खास रिपोर्ट। वैसे तो कुदरत ने सारे दिन एक जैसे बनाए हैं, लेकिन हम इंसानों ने अपनी सहूलत और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दिनों को ख़ास बना दिए हैं। उन्हीं ख़ास दिनों में से एक है वैलेंटाइन डे, यानी 14 फरवरी। इसे प्यार के जश्न का दिन कहते हैं। शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, इनकी दास्तान तो हम सदियों से सुनते आए हैं, लेकिन हम आपको एक दूसरी तरह की एक दास्तान सुनाना चाहते हैं। हम प्यार का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन क्या दूसरे धर्म या जाति में प्यार और शादी की इजाज़त परिवार और समाज अब भी देता है? लेकिन इसके बावजूद कई लड़के लड़कियां बगावत कर अपनी प्रेम कहानी लिखने की हिम्मत आखिर जुटा ही लेते हैं। दिल्ली और अहमदाबाद में ऐसे ही प्रेमी जोड़ों से मिली BBC संवाददाता दिव्या आर्य।
जब हमको प्यार हुआ था तब वो एक मुसलमान थी, मुझे मालूम था, तब मैं एक हिंदू था, उसे मालूम था। हम नहीं चाहते कि कोई भी अपनी पहचान खो दे।
21 साल के आदित्य और उसी उम्र की आयशा दिल्ली में एक साथ रहते हैं। उन्हें एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत है, पर शादी नहीं कर पाए हैं। दोनों के परिवारों की जिद है कि वो अपना धर्म बदलें। इसी दबाव की वजह से 2 साल पहले आयशा बैंगलोर में अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली भाग आई।
5 मंथ्स के लिए तो दोनों इतना डर गए थे, न तो वो वर्क कर रहा था, न तो मैं वर्क कर रही थी। हम एक रूम में ही थे, एक सिंगल रूम था, उसी में थे हम। और उसके बाद मुझे ये फियर था कि बाहर जाऊँगी तो कोई ना कोई मार लेगा मुझे।
सुरक्षित होने के लिए शादी जरूरी है, पर बिना परिवार की रजामंदी के और बिना धर्म बदले ये कैसे हो? फिर आयशा और आदित्य की मुलाकात आसिफ और रानू से हुई। उनकी संस्था धनक ऐसे जोड़ों की मदद करती है। उन्होंने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म बदले कानूनन शादी की जा सकती है। साल 2000 में इन्होंने भी इसी एक्ट में शादी की थी। हालांकि रानू बताती हैं कि इसमें भी मुश्किलें आ सकती हैं।
कैपिटल सिटीज में फिर भी आसान है, लेकिन छोटे शहरों में क्योंकि ये पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, उसमें 1 महीने का नोटिस होता है, फोटो लगती हैं, तो कपल्स के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो लीगली अपनी शादी को किस तरीके से रजिस्टर कर पाए।
अपने जैसे अलग धर्म और जाति के जोड़ों की दुनिया के बारे में जानना आदित्य और आयशा के लिए अनमोल रहा है। अब वो अकेला महसूस नहीं करते। गुजरात के एक राजपूत परिवार की शिल्पा और दलित परिवार के रविंद्र को ऐसा अनुभव नहीं मिला। अपनी लड़ाई अकेले लड़ते लड़ते आत्महत्या तक करने की सोच ली थी, फिर हिम्मत कर भागकर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की, पर ये नई परेशानियों की शुरुआत थी। रविंद्र बताते हैं,
ये जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बहुत खतरनाक चीज होती है कि अच्छे अच्छे इंसान के वो मनोबल को तोड़ देती है। शादी के दूसरे दिन भी मैं यहाँ पे मजदूरी पे चला गया था, एज अ मैं इंजीनियर जॉब करता था, वो स्टेटस दो दिन पहले का था। दूसरे दिन शादी के एक दिन के बाद मैं यहाँ पर मजदूरी पे चला गया था, वो हाथ में छाले वाले सब हो गए थे दूसरे दिन भी।
रविंद्र और शिल्पा को बार बार घर बदलना पड़ा। जैसे ही मकान मालिक को उनकी अलग जातियों के बारे में पता चलता, उन्हें कमरा खाली करने को कह देते।
इंटरकास्ट मैरिज करने वाले लोगों को तो पहले एलियन की तरह से देखते हैं, और उनकी मानसिकता सबको ऐसे लगती है कि ये आतंकवादी है जो समाज में बगावत करते हैं। रियलिटी ये है कि बदलाव आएगा तो ही समाज सुधरेगा, लेकिन ये बदलाव से डरते आज की समाज। कास्टिज्म खत्म करने का वो पहला चरण है। अगर ज्यादा से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो गए तो एक ऐसा भविष्य आएगा, एक ऐसा भारत की निर्माण होगी जहाँ पर किसी को कास्ट को लेकर इश्यू नहीं होगा।
बदलाव की ये कोशिश मुश्किल है, और इन जोड़ों को एहसास है कि एक दूसरे का साथ इनका सबसे बड़ा हथियार है। शिल्पा कहती हैं,
क्या होता है कभी कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, हम एक टाइम पे है कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एक दूसरे पे आप ब्लेम डालना शुरू कर देते हो। फिर एक टाइम पे हमने साथ में बैठ के एक डिस्कशन किया, जो भी प्रॉब्लम है उन सभी से हम लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट लेके, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, साथ में, तो वो सब सही लगने लगता है और हैप्पीनेस भी आ जाती है। रोना बंद कर दिया है, ऐसा सोच सकते हैं।
दिव्या आर्य, बीबीसी।
और अब है आपकी चिट्ठियों के जवाब का दिन।
आपकी राय, आपकी चिट्ठियों के साथ हाजिर हैं इंदु पांडे, और इंदु पांडे के साथ मैं मोहनलाल शर्मा। आज इंदु आप खुश तो बहुत हैं?
मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके अच्छा साथ चिट्ठियां पढ़ने का मौका मिल रहा है।
और मुझे भी कार्यक्रम को करने का मौका भी दो दिन पहले मिला था।
जी, तो शुरू करें चिट्ठियों का सिलसिला।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो हमारे पास पहली ये जो मेल आई है, ये जीशान नैयर की है, पत्रकारिता का छात्र, हैदराबाद, ग्राम तरैया, जिला बेगूसराय, बिहार से लिखते हैं। कहते हैं कि विश्व रेडियो दिवस पर बीबीसी हिंदी सेवा की पूर्व प्रमुख अचला शर्मा जी से बातचीत बहुत अच्छी लगी, और इसके लिए कई सारे लोगों ने हमें मेल भेजा है, जिसमें से हैं अरुण यादव ग्राम शेरपुर कुशीनगर से, नरसिंह बहादुर सिंह मेरठ से, अरविंद गुरव भी हैं जिन्होंने अचला शर्मा के उस प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है, क्योंकि कल
विश्व रेडियो दिवस था और विश्व रेडियो दिवस पर हमने अचला शर्मा से जो बातचीत थी वो प्रसारित की, और हमारे तमाम श्रोता तमाम बार चिट्ठियों में इस बात का जिक्र किया करते थे कि अगर मौका मिले तो अचला जी से हमें रूबरू कराएं। कल मौका था, विश्व रेडियो दिवस का मौका था, और इसलिए हमने भी सोचा कि अपने उन तमाम श्रोताओं की इच्छाओं और हसरतों को पूरा कर दिया जाए जो कि उन्हें एक बार दोबारा सुनना चाहते हैं। और बस आपकी और हमारी ये मुराद पूरी हुई, अचला शर्मा जी से बातचीत हुई, आपने पसंद किया। जीशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मेल को लिखा और हम तक पहुंचाया।
तो अचला शर्मा की तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन थोड़ी सी तारीफ होती है दिल नवाज पाशा के लिए।
क्या बात है, क्या बात है, कौन लिख रहे हैं ये?
फारूक अब्दुल्ला फिजा हैं, लखीमपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से।
क्या कहते हैं?
कहते हैं कि दिल नवाज जी द्वारा रेडियो डे पर अचला शर्मा जी का जो इंटरव्यू था वो छोटा इंटरव्यू जरूर था, लेकिन दिल पे वो छा गया। बहुत
मतलब
अच्छा
यहाँ पर अचला शर्मा की तो बात हम कर चुके हैं, यहाँ हाँ। पर दिल नवाज पाशा की बात है जिन्होंने इस इंटरव्यू को लिया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अचला शर्मा के साथ साथ दिल नवाज पाशा का सवाल पूछने का अंदाज पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये हमारे पास पोस्ट कार्ड आया है नागेंद्र कुमार कुशवाहा का, पिपराही बाजार, जिला शिवहर, बिहार से।
ये तीन रंगों में लिखते हैं हमेशा, ठीक है, जिसमें नीला, हरा और लाल।
जी हाँ, तो इनकी रंग बिरंगी चिट्ठी दूर से ही पहचानी जा सकती है। तो इन्होंने लिखा है कि आदर्श राठौर द्वारा प्रस्तुत जो कार्यक्रम था दुनिया जहान, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी कई सारे ऐसे मेल हैं जो इसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मेल आया है जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से, ये वात्सल्य राय की प्रस्तुति दुनिया जहान की बात करते हैं जो कि कल सुना था इन्होंने थाईलैंड के ऊपर, वो बहुत अच्छा लगा। और कई ऐसे भी हमारे पास मेल आए हैं जिन्होंने कहा कि थाईलैंड की वो जो समस्या थी वो तो हम नहीं समझ पाए लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा था।
वैसे ये जो जंग बहादुर सिंह है गोल पहाड़ी से, इन्होंने क्या लिखा है?
इन्होंने यही लिखा है कि थाईलैंड में आगामी 24 मार्च को होने जा रहे आम चुनाव को लेकर के प्रस्तुत इस कार्यक्रम से बहुत अधिक कुछ पल्ले नहीं पड़ा।
हाँ।
क्योंकि वहां के राजा, उनकी दीदी, पूर्व सैन्य शासकों का नाम हमें न तो उच्चारण में समझ में आया ना ही उसकी वर्तनी हम ठीक से लिख सकते हैं। फिर भी विवेक काटजू जी के मार्फत एक बात समझ में आई कि सेना, राजा, राजनीतिज्ञों के घालमेल से थाईलैंड का प्रशासन चल रहा है।
वैसे जहां तक थाईलैंड के इस कार्यक्रम की बात है, तमाम और हमारे श्रोता भी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को पसंद किया है। और रही बात थाईलैंड के नामों की, जो वहां के किंग हैं तो या किंग हैं या जो उनके पुत्र हैं, उनके नामों की जहां तक डिक्शन की बात है, तो वो डिक्शन चूंकि हिंदी के डिक्शन नहीं है इसलिए उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और पारखी नज़रों से अपने कार्यक्रमों को देखें और जहां पर लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसका और कायदे से उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचा सकें।
ये है मदन लाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से, लिखते हैं कि नमस्कार, भारत दिन भर दुनिया जहान विवेचना अच्छे ज्ञानवर्धक हैं। पाकिस्तान डायरी और रेडियो दिवस पर अचला शर्मा की बातचीत अच्छी लगी। आप यानी कि मोहनलाल शर्मा और सर्वप्रिया सांगवान का बैक टू पवेलियन में स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम श्रोता पूछ भी रहे थे कि भाई मैं कहाँ गायब हो गया हूँ, तो उनको जवाब मिल गया है कि भाई वापस यहीं पर हैं।
तो अब पता बता दें?
बिल्कुल पता बता देते हैं। आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और यदि आप हमें मेल लिखना चाहें तो ईमेल एड्रेस है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। इस साल 30 मई से इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम आखिरी बार अपनी तैयारियों का जायजा करने 24 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतर रही है। 2 T20 और 5 वनडे मैचों के लिए कल भारतीय टीम का सिलेक्शन होना है जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। विश्व कप के लिए अभी 2 स्थान ऐसे बचे हैं जिनमें खिलाड़ी तय नहीं किए गए हैं। इनमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का भी एक स्थान शामिल है जिसमें चयनकर्ता जयदेव उनादकट और खलील अहमद में से किसी एक पर अंतिम मोहर लगाना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला से पता चलेगा कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कौन सा खिलाड़ी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और दूसरे विकेट कीपर के रूप में इंग्लैंड जाएगा। और वहीं वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शेनन गैब्रियल को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले 4 मुकाबलों से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने सेंट लूसिया टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के कप्तान जो रूट पर समलैंगिकता से जुड़ी टिप्पणी की थी जिसके कारण ICC ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। ICC की सख्ती के बारे में बात कर रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन।
मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ फील्ड में वो सही नहीं था, टू दी एक्सटेंट के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से रूट ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। लेकिन मैंने आज ही स्टेटमेंट पढ़ा है शैनन गैब्रियल का, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये एक्सचेंजेस हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 4 मैच का सस्पेंशन थोड़ा सा ज्यादा है। क्योंकि देखें, एक तो आदमी कुछ स्पॉन्टेनियसली बोल देता है, उसके बाद जो फॉलो अप एक्शन है वो भी थोड़ा नजरिए में रखना चाहिए। शैनन गैब्रियल ने बताया कि किस तरह से कॉन्वर्जेशन हुआ आपस में, प्लेयर्स बीच में जो बातचीत हुई, तो शायद इस पर थोड़ी सी एक और निगाह देनी चाहिए ICC को।
और अब बात गुवाहाटी में चल रही राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की, जहां आज मौजूदा चैंपियन साइना नेहवाल ने खराब कोर्ट के चलते अपना सिंगल्स मैच खेलने से इनकार कर दिया। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना का आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्रुति मंदाना से था, लेकिन उन्होंने कोर्ट का निरीक्षण करने के तुरंत बाद ही स्पष्ट कर दिया कि ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप करीब है और वो इस कोर्ट पर खेलकर जोखिम नहीं उठाना चाहती। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब प्रमुख समाचार।
BBC समाचार।
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में आज हुए चरमपंथी हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 34 जवानों के मारे जाने की आशंका है। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर लेथपोरा में हुए इस हमले में कई जवान जख्मी भी हुए हैं। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ईरान पर लगाए गए अमरीकी प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश पर यूरोपीय देशों की आलोचना की है। बीबीसी समाचार। तो दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली कपिल देव सिंह ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।